الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مسائل کا حل۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جب موسم چینجنگ ہوتی ہے، یعنی جیسے گرمی سے سردی کی طرف جاتے ہیں، اسی طریقے سے سردی سے جب ہم گرمی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں خود ذاتی طور پر کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بالخصوص کن چیزوں کی احتیاط جو ہے وہ کروانی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟
اس میں آپ نے جو توجہ دلائی ہے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، کیونکہ ابھی ایک دم فلکچویشن آئی ہے آپ کے ٹیمپریچر کے اندر، جو ٹوٹلی ٹھیک ٹھاک فلکچویشن آئی ہے، تو ایک دم جو گرمی کا تھا ایک دم وہ ٹھنڈ کی طرف چلا گیا ہے۔ اب جب یہ سچویشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں جو وائرل انفیکشن ہیں اس کے کافی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں پھیلنے کے۔ سمپل سا طریقہ ہے، ان ساری وائرل جو بھی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اپنی جو صفائی ستھرائی کا خیال ہے، پرسنل ہائیجین جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ زیادہ دھیان دیں، پلس کھانے پینے کی چیزوں کو ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو اس وقت موسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو چوائس کریں، اس کو بہتر کریں۔ اس طرح آپ کا ڈیفینس میکنزم بہتر ہوگا، آپ کی قدرت مدافعت جو ہے بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور مختلف وائرسز سے فائٹ کرنے کی جو آپ کی اندرونی صلاحیت ہے اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ اب اس کے اندر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو، جیسے آپ کی مثال کے طور پر موسم چینج ہوا، ٹھنڈ کی طرف آ گئے، ہم اسی کو اگر لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بالخصوص جو سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ان تمام معاملات پہ دھیان دینا ہے۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو آپ یوزلی گرمی کے موسم کے اندر ایک دم ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور آپ بالکل کھڑکی کے پاس سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک نزلے کی کیفیت ہوتی ہے، گلے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے جب موسم چینج ہو رہا ہو، بالخصوص جو مڈ نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ اوس بھی گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کی ہائٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وینٹیلیشن بہت کلیئرلی آ رہی ہوتی ہے، سمندری ہوائیں وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہاں تھوڑا سا پریکاشن کرنا پڑے گا آپ کو کہ اپنے دروازے کھڑکیوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے بیچ میں موسم گرم ہوا،
جی
لوگوں نے پنکھے اور کچھ نے اے سی اگر استعمال شروع کر دیا، اب موسم اچانک سے یہ ٹھنڈا ہو گیا۔
میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پیٹرن ایک دم چینج ہوتا ہے نا، تو فوری طور پہ انسان اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتا، تو وہ پرانے پیٹرن
باڈی اڈاپٹ نہیں کر پاتی، تو
جس کی وجہ سے اس کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیٹرن کے موسم کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لے نا، تو کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ اسی طرح ڈائٹ کے اوپر، اب جیسے گرمی کا سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے، عموماً تھوڑی سی گرمی بڑھتی ہے تو ہم پرانے پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں، پانی کی مقدار ہم باڈی میں پوری نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ضرورت اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔
پانی پینا کیا گرمیوں میں ضروری ہے یا سردیوں میں بھی پانی پینا ضروری ہے؟
پانی دیکھیں دونوں سیزن میں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ تو ہم نے چاہیے چاہیے ہر حال کے اندر۔ آپ نے
پیاس نہ لگی ہوئی ہو تو
نہیں، پیاس لگنا پانی کی ریکوائرمنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ پانی کے باڈی میں ایک لیول سے نیچے گر گیا ہے آپ،
ٹھیک ہے،
تو اس وقت آپ کو پیاس لگتی ہے، تو اس لیول تک نیچے لانے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ دیتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ ختم ہونے سے پہلے اس کو ڈلوا لیتے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی بند نہ ہو، موٹر سائیکل کا بھی یہی حال احوال ہوتا ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ آپ اس کیفیت میں چلے جائیں یا پانی کی کمی کی کیفیت میں چلے جائیں، پھر مختلف پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اٹھ کے بیٹھتا ہے آدمی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، کاف مسلس کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، مختلف مسائل۔
ڈاکٹر صاحب اکبر بھائی، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بیان فرما رہے ہیں نا، یہ بہت اچھا مدنی پھول ہے کہ ابھی سردیوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا، مسل پین، جوڑوں میں درد اور بہت زیادہ کمر میں درد کی کمپلین آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سردی کے حوالے سے جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، بھلے موسم کیسا بھی ہو، हाइड्रेशन तो इम्पोर्टेंट होती है, हाइड्रेशन यानी पानी तो रिक्वायर्ड होता है, पानी में नमकियात अपने मौजूद होते हैं। वो नमकियात का फायदा ये होता है, जो पट्टे या मसल्स इनको काम करने के लिए जो नमकियात चाहिए होते हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं।
सही
और जब इसकी कमी हो जाती है, प्लस इसके साथ टेम्परेचर आपका लो होता है, जैसे सर्दी का मौसम है, अब ठंड भी थोड़ी सी आपको लग गई है, फिर पानी की कमी भी है, तो मस्कुलर स्पाज्म ज्यादा हो जाते हैं, कमर में दर्द ज्यादा हो जाते हैं, शोल्डर में पेन ज्यादा कंप्लेन आना शुरू हो जाती है।
डॉक्टर साहब, गिजा के हवाले से भी कोई एहतियात है या सिर्फ ये दीगर जो आपने
देखिए,
एहतियात?
बेसिक अभी पानी की एहतियात अभी हमने अर्ज की।
नहीं, जैसे अब मौसम जो है वो जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा है, तो गिजा में भी कोई एहतियात की आ जाते या जिस तरह की रूटीन चल रही है उस तरह की रूटीन चलाते रहे?
सलाम अलैकुम
व रहमतुल्लाहि
व
बरकातुहु।
निगरानी शूरा की आप की है डॉक्टर साहब, अगर इसको आप कंप्लीट कर दें अगर बिल्कुल।
गिजा तो मौसम के हिसाब से जो होती है वो वैसे हर घर का पैटर्न होता है, उस हिसाब से
अच्छा
चलती रहती है।
फिर खुशी जिसके अंदर जो आप
वो जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो वैसे
थोड़ा
कम
सा कम रख लेना चाहिए, जैसे गोश्त वगैरह के आइटम्स होते हैं थोड़ा सा उसको कम रखें, सब्जियों के ऊपर ज्यादा आए और अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से उसको जो भी तरीके कार है बॉइल करने का उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा।
ठीक है, हम कुछ कॉल्स का सिलसिला लेते हैं और SMS भी हमारे पास आना शुरू हो गए। निगरानी शुरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ोजल तशरीफ ले आए हैं, तो मसाइल का हल सिलसिला आगे लेकर चलते हैं।
यार मेरे साथ एक मसला है यार, मैं मतलब इमरान अत्तारी साहब से एक मसला पूछना चाहता हूँ। मसला ये है कि मैं जब भी शराब वगैरह छोड़ के, ये मकसद है ना, जो गुनाह के काम छोड़ के तौबा करता हूँ, तो फिर उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरी रोटी वगैरह ये सब बंद हो जाते। अभी भी मैंने नमाज स्टार्ट की थी तकरीबन 10-15 दिन पड़ी, तो अभी जो मेरे साथ ये मसला है कि मेरा अभी रोटी भी भूख भी लग रही, चक्कर आ रहे हैं, फिर दोबारा बीमार हो गया, इसका मसला का कोई हल हो तो बताए।
तोबा करके इबादत करते हैं तो बीमार हो जाते हैं।
शराब का भी तस्करा किया है।
हाँ,
के शराब छोड़ता हूँ, तोबा करता हूँ और फिर उसके बाद जब रूटीन लाइफ में जो है होता हूँ तो मुझे भूख जो है वो नहीं चलती।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन। मैं जो आपका मसला समझ सका हूँ, थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड भी मुझे लग रहा है, क्योंकि शराब के अंदर जो खराबियां हैं और इसके अंदर जो मेडिकली डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जिनकी वजह से अंदर के सारे मामलात और आजा तबाह बर्बाद हो रहे होते हैं, तो जब आप शराब छोड़ेंगे तो मेरा ऐसा गुमान है कि वो अंदर से एक चीज जो है ना वो नीड करेगी, तलब करेगी, और जब आप उसको नहीं देंगे तो वो उसका एक अपना साइड इफेक्ट टेम्परेरी आ रहा होता है, ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। इससे आप जो ये जो थोड़ा बहुत जो आपको तबीयत का मसला लग रहा है, नहीं असल में तबीयत यूं समझिए कि ये वो तकलीफ है जो इंजेक्शन लगने की तकलीफ होती है, इंजेक्शन की तकलीफ होती है मगर उस तकलीफ के अंदर एक शिफा और राहत छुपी हुई होती है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप इसको सीरियस ना लें, बल्कि ये यूं समझिए कि ये जितना आपको इब्तदाई प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये वो आदतें निकल रही हैं। वो यूँ समझे कि जब वॉमिटिंग होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वॉमिटिंग अंदर की बहुत गंदगियां लेकर निकल रही होती है। तो इसको यूँ समझिए कि ये एक आपकी सेहत के लिए गोया के एक अच्छा उम्मीद का साइन होगा, और आप अपने तौबा पर डटे रहें और इस गंदगी और नापाकी की तरफ हरगिज ना जाएं। कि शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है, ये बुराइयों की माँ है, और इससे ना सिर्फ यूँ समझिए कि ये खाली ये बुराई कि जिसको हम कहें कि अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी तो है ही और सख्त बुराई है और बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, मगर इसके जो तिब्बी यानी मेडिकली और फिजिकली जो लॉसेस हैं, जो नुकसान हैं, वो इंतहाई तबाहकुन है। आज इसकी वजह से कई जिगर के मरीज हैं और कई गुर्दों के मरीज हैं और कई मैदे के मरीज हैं और कईयों की दिमाग खराब हो गए, कईयों की आंखें चली गई हैं, कई मोहताज हो गए, कई बेरोजगार हो गए, कई लाचार हो गए, कईयों के घर तबाह हो बर्बाद हो गए इस बदबख्त और मनहूस शराब की वजह से। तो अल्लाह आपको आपकी तौबा पर इस्तकामत दे, अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा भी दे और तौबा पर इस्तकामत भी अता फरमाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस टेम्परेरी तकलीफ को बर्दाश्त करें और देखें, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको रब की रहमत से राहत मिलेगी आप बाकसरत या सलामो पढ़ते रहे, या कवियो पढ़ते रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे बाकसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह बाकसरत पढ़ते रहे। और जितना अल्लाह तौफीक दे दुरूद पाक की कसरत करें, इंशाल्लाह मेरे आका पर दुरूद की मिठास आपकी इस बीमारी की करवाहट को खत्म कर देगी। मेरे रब की रहमत शामिल आ रहे, बिल्कुल हिम्मत में रहना, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे।
अच्छा, मैसेज है कि भाइयों में लड़ाई रहती है। अब आप एक अरसे से यूं समझे कि गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से सिलसिला कर रहे हैं फैमिली मैटर, तो उसमें अगरचे इस तरह के मसाइल आते हैं और यहाँ भी लोग आपसे इसी तरह का जो है वो अपना मसला पूछ रहे हैं, तो इसका हल?
असल में यहाँ मसला ये है कि इन्होंने उम्र नहीं बताई है।
अच्छा,
ये दो भाइयों में जो झगड़ा हो रहा है तो दो भाइयों की उम्र कितनी है?
दो का तस्करा नहीं है, भाइयों में।
जब भाइयों में तस्करा है तो उम्र कितनी है
ये नहीं।
अब ये बच्चे लड़ रहे हैं या बड़े लड़ रहे हैं, ये शादीशुदा लड़ रहे हैं कि गैर शादीशुदा लड़ रहे हैं, ये एक कारोबार में रहने वाले लड़ रहे हैं या एक रोजगार है और एक बेरोजगार है वो लड़ रहे हैं। तो असल होती है, एक तो उम्रों के साथ जो बच्चे लड़ते हैं ना छोटे छोटे, उनको इतनी लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। ये तो समझाते रहे, मोहब्बत करवाते रहे, ये इसी तरह बच्चे कूदते खेलते लड़ते झगड़ते मतलब यूं चीखते चिल्लाते ही बड़े होते हैं। इसमें वो बुरी बात जो मुझे महसूस होती है कि इनके साथ साथ बड़े चिल्ला रहे होते हैं, और अच्छा बड़े इतने चिल्ला रहे होते हैं, माँ स्पेशली चिल्ला रही होती है, इतनी चिल्ला रही होती है कि बच्चे उसकी चीखों पुकार के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं कि बाद में समझ ही नहीं पड़ती कि माँ चिल्ला भी रही है कि नहीं चिल्ला रही है। तो ये फिर इसकी माँ, इनकी माँ शिकायत करती है कि मेरी सुनते नहीं है। अब सुनते नहीं, अब तो चीख भी नहीं सुन रहे, ये कहो, क्योंकि आपने इनको चीख 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 वैसे बहुत ज्यादा मारो ना तो चोर भी या मुजरिम भी जो है ना वो आधी मुजरिम बन जाता है। वो मार से डर ही नहीं लगता होता है, भाई अब दो पड़ेंगी ना खा लेंगे, वैसे ही चार तो वैसे खाने का रिकॉर्ड मौजूद है। एक तो ये, अब रह गई बड़ों की झगड़े, तो बड़ों के झगड़ों में ये होता है कि सबब देखा जाए। बच्चों की वजह से भी भाइयों में झगड़ा हो जाता है, बीवियों की वजह से भाइयों में झगड़ा हो जाता है। मेरे पास एक खानदान का केस आया, वो चंद भाई थे, मैं तादाद भी नहीं बताता था कितने थे, वो चंद भाई थे। उन भाइयों ने मुझे कहा कि हमारे घर में बस झगड़ा बहुत है और बेसुकूनी बहुत है। तो जब इसकी थोड़ी सी मालूमात हासिल हुई तो पता चला कि ये जब घरों में जाते हैं ना काम काज से आने के बाद, तो इन बिचारों की जो बीवियां हैं ये पूरे दिन की कहानियां सुनाती हैं, और अपने नंदों की ने भावज की ये सबकी कहानियां सुनाती हैं। और वो शादीशुदा भाई होता था ना, सबकी भाभियां और सब एक साथ, किचन एक तो भी सब एक, तो फिर ये होते मसले, फिर बच्चे एक ही घर के अंदर, बड़ा घर हो तो ये मसले। तो फिर मैंने इनको हल बताया, यार आप मेहरबानी करके अपने घर वालों को जहन दो कि भाई हम आते हैं तो क्यों गिबतें चुगलियां तो मत, अभी आपके घर के मसाइले निपट लिया करो, दिल भरा क्या करो, वरना तो अब असल में है ये कि जब इंसान सुनता रहता है ना लाख अपने आप को बचाने कोशिश करे, जहन के अंदर सामने वाले के लिए नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा फिर जब भाई जाएगा, यार तुम्हारे यार वो बीवी ने ये बोल दिया था, बता तो तेरी बीवी को समझाना, वो मेरे दिमाग खा रही थी, असल मसला तो तेरी बीवी का। अब वो यही ये तेरी बीवी ने मेरी बीवी के चक्कर में जो ना घर बिल्कुल वो आग का गोदाम बना हुआ होता है, इतनी तपिश होती है फिर घर के अंदर। तो ये होता है, तो अल्लाह करे कि हमारे दिल मिले हुए हों, वरना ऐसी सूरत हाल के अंदर गुनाह से बचकर आदमी फिर थोड़ा थोड़ा फासले से ही रहे ना, इसमें भी बेहतर, क्योंकि ये जो झगड़े ना जिसका मैं अभी तस्करा कर रहा हूँ, और ये वो झगड़े हैं कि जिसकी वजह से टेंशन, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, फालिज, लकवा, शुगर, ये 8 तो मैंने खाली गिनती करवाई, इसके अलावा बाकी डॉक्टर ज्यादा बताएंगे, ये इतने प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। अच्छा एंजाइटी, आजकल जो आप लोगों ने नया वर्ड निकाला है मेडिकल ने, हालांकि पुरानी चीज है, एंजाइटी बोल दिया थोड़ा और खुश हो जाता है, इंग्लिश इंग्लिश बीमारी लगी है, ठीक है, एंजाइटी थोड़ी इंग्लिश बीमारी लगती है, हालांकि ये बहुत देसी बीमारी है, दिमाग का मसला है आदमी का, तो उसको एंजाइटी कहता हूँ। ये भी नए नए नाम है, डॉक्टर भी निकाल दे रहे थे कभी कभी, इंग्लिश बीमारी लगी है, आदमी को बोलने में भी अच्छा लगे मेरे को एंजाइटी है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह शिफा अता फरमाए, खुश तो वही कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ।
आपने जो फरमाया कि शोहर जो घर में जाता है, खातून जो है, बेगम साहिबा जो है, वो तमाम चीजें बता रही होती है, तो बेगम साहिबा किसको बताएं अगर शोहर को ना बताएं?
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, इसका रब सुनता है, इसका रब जानता है, इसका रब देखता है, और इसका रब ही है जो इनके हालात बदल सकता है। ये शोहर बदलने जाता है ना तो कुछ और ही बदल जाता है। अपने रब की बारगाह में अर्ज करें, वो कलबों को फेरने वाला है डॉक्टर साहब, वो है वो, उसकी बारगाह में तो मेरे आका ने ये दुआ की, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ये दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित रख। वो कलबों को फेरने वाला वो है, कल्ब उसके दस्ते कुदरत में। बीवियां जब अपने शोहरों से इस तरह की बातें करती है ना हुजूर, इससे घरों का सुकून खराब ही होता है। यानी बहुत रियर केस के जिसके बारे में ये समझ जाए कि ये इन्वॉल्व होंगे तो झगड़ा नहीं होगा बल्कि कुछ मतलब बेहतरी आ जाएगी। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना चाहिए ना औरत के दिमाग में, मतलब कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका घर, घर को सुकून अमन प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना के रखना, और अपने बच्चों की इस्लाम दीन के बारे में तरबियत करते रहना, और अपने शोहर के मामले में अमानतदार दयानतदार और पाक बाज रहना, और इस तरह की इसकी वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस माशरे की यूं समझिए कि जो फ्यूचर है, जो एक मतलब बच्चों के ताल्लुक से ले ले, मतलब बच्चे बड़े होते हैं ना, इसका मुस्तकबिल अल्लाह ताला ने इन औरतों के सुपुर्द किया हुआ है कि इनकी अच्छी तरबियत करे। तो डेफिनेटली जैसे कि पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन जरूरी है ना, तो बच्चों की तरबियत के लिए ये क्या कहते हैं घर जरूरी है। अच्छा, दुनिया का इस वक्त लास्ट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया का जो वर्ल्डली एजुकेशन का सबसे हाई फाई और वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड और जो स्कूलिंग सिस्टम रहा, मैं वर्ल्डली बात कर रहा हूँ, दुनियावी तालीम के तारुफ से बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा समझ में आ जाती है बात, वो दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो फेमस और जिसको दुनिया में सक्सेस कहा जाता है स्कूलिंग जो सिस्टम है वो फिनलैंड का है, ठीक है, फिनलैंड का स्कूलिंग सिस्टम ये दुनिया का सबसे मशहूर और मकबूल और कामयाब कहलाता है। मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बात नहीं कर रहा उसे, तो वो कहलाता है, और उसकी तालीम की एक वजह ये है जो रीजंस बयान किए गए कि वो 6 साल से नीचे बच्चों को लेता ही नहीं है स्कूल में, 6 साल तक सिर्फ बच्चे घर में रहते हैं, और घर में इनके वालिदैन और जो फैमिली मेंबर है ना वो इनको एजुकेट कर रहे होते हैं, और आपको सुनकर हैरत हो कि 13 साल की उम्र से इम्तिहान शुरू होता है, इससे नीचे एग्जाम ही नहीं है बच्चों का स्कूल के अंदर।
हाँ, ग्रीन करिकुलम बोलते हैं इसको।
ये बहुत सारी इसके मतलब वो चीजें हैं। तो अब चूंकि मतलब हमारी दावत इस्लामी की भी एक स्कूलिंग इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है दारुल मदीना के नाम से, तो दुनिया भर की मालूमात का कुछ ना कुछ इस मामले में लेने का एक निजाम होता है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा था कि ये औरत है डॉक्टर साहब, ये औरत है, औरत की असल जिम्मेदारी वो ये है, अगर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे यकीन माने ये खुद खुश, इसके घर में खुश और सब खुश। तो लेकिन ये चूंकि घर में ये बेचारी ये इसे इसको हमारे वो रहवाता नहीं है, और ये आप वाला अब जुमला है कि यार मैं आपको ना बताऊं तो किसको बताऊं। अच्छा, अब शोर साहब अगर खाली चुपचाप सुन लेना तब भी मुसीबत है, अब जवाब तो दो। अरे भाई, सुनने की बात थी, बोलने की बात थोड़ी कोई थी, क्योंकि जब जबान चलती है ना तो फिर मसले चलते हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि ये जो झगड़े जो अब ये भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, पार्टनरशिप में झगड़े हो जाते हैं, ये तेरा नफा कम मेरा नफा ज्यादा, मैं मेहनत कम करता हूँ तू मेहनत कम करता है, मैं दुकान पर जल्दी आता हूँ तो दुकान पर देर से आता है, बेरोजगार होगा तो तू खाली खाली रोटियां तोड़ता है, देर तक सोता रहता है, मैं कमाता रहा हूँ मैं लाता रहा हूँ,
ये रियलिटी नहीं है, मतलब वो एक शख्स
झगड़ों की वजह बयान कर रहा हूँ, मैं झगड़ों की वजह बयान कर रहा हूँ।
क्या करें?
बीमारी हो या झगड़ा हो, दूर करने का इलाज ये है कि इसका सबब दूर किया जाए। आप सबब दूर करें तो झगड़ा दूर हो जाएगा, सबब दूर करें तो बीमारी दूर हो जाती है।
ये भी आपने गुफ्तगू के दौरान एक जुमला कहा कि घर में जो सुकून है ये मतलब औरत की जिम्मेदारी है। हम तो आमतौर पर ये समझते थे कि ये मर्द है वो होता है जिसकी वजह से घर में
तकसीम है। अल्लाह ताला ने आपको अगर आयत करीमा याद आ जाए, अर-रिजालु क़वामून अला निसा, मर्द अफसर है औरतों पर। आगे क्या?
बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम,
इन बास को बाजों पर फजीलत दी। बिमा
व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम,
ये तुम पर अपना माल खर्च करते हैं। और आगे
फसालिहातु क़ानितातुन,
अब आगे औरतों की तारीफ की गई है कि कौन सी औरतें अच्छी हैं और इनकी मतलब खुसूसियात बयान की गई हैं। तो मर्द के अफजल होने की या अफसर होने की एक वजह कुरान करीम ने बयान की कि ये तुम पर अपना माल खर्च करते, इसको नान नफका कहते हैं।
सही।
तो एक सिस्टम है कि मर्द बाहर रहकर कमाता है और औरत घर में रहकर अपने घर और पूरे निजाम को चलाती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इनके जिस्मों को भी अलग अलग सलाहियतें दी हैं और इनकी सोचें अलग अलग बनाई हैं, इनका नेचर अलग अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो इनके इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकी जो लाइफ जॉब है, भैया मैं यूं कहूँ कि इनकी जो लाइफ जॉब डिस्क्रिप्शन JD जिसको हम कहते हैं, तो ये सब जुदा जुदा है। तो इन चीज को समझेंगे तो औरतें अगर इस तरह अपने घर में रहेंगी ना और बर्दाश्त करेंगी, तो रब ने चाहा तो इनके बर्दाश्त की वजह से घर अमन का गहवारा बना रहेगा। बल्कि मैं तो ये अर्ज करूंगा, मेरी इस्लामी बहनों को, अपनी इस्लामी बहनों को ये अर्ज कर सकता हूँ कि जब खुदा ना खास्ता भाई आकर भाई की शिकायत करें ना, तो आप बोलो कि भाई है, छोड़ दो यार, भाई है, बहन है, अब्बू है आपके, अम्मी है आपकी, इनके बारे में नहीं आप इस तरह बोला करें, ये बस आप माफ कर दिया करो। ये इस्लामी बहने कहे अपने घर के अंदर, यकीन माने आप खुद आपकी अपनी जिंदगी मदीना मदीना हो जाएगी। बल्कि अल्लाह की रहमत शामिल आए तो आपकी अगर उम्र बड़ी हो गई और अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र की बूढ़ी हो गई तो अल्लाह ताला आपके मददगार और सपोर्ट पैदा कर देगा।
मैसेज शामिल करते हैं कि किसी का मैसेज है कि मेरे शोहर को गर्मियों में जो है ना वो पीलिया यरकान हो जाता है।
अल्लाह शिफा अता करे प्यारे हबीब के सदके में। डॉक्टर साहब क्या वजह होगी इसकी
गर्मियों में?
अब बात यह है कि हर गर्मियों में होता है और अगर फ्रिक्वेंटली होता है तो फिर तो रीजंस देखनी पड़ेंगी, क्या वजूहत है, आया उनका जो हाइजेनिक कंडीशन है, रहने का मैयार है वो स्टैंडर्ड का है या नहीं, पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रजा के कोई मसाइल तो नहीं है। और अगर 2-3 दफा हो चुका है तो प्रॉपरली चेकअप करवा लें, एक डिटेल चेकअप करवा लें कि क्या रीजंस हैं, जिगर के हवाले से उसके इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है, लैब्स वगैरह करवाई जा सकती है, कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो करवाई जा सकती है कि रिपीटेडली क्यों हो रहा है ये। अगर उसके बाद कोई कॉज नहीं निकलती है तो फिर अपने सफाई सुथराई के माहौल को जो है वो देख लें, पानी बॉयल करके पी लें, उससे साफ सुथरा इस्तेमाल करें, खाने का इस्तेमाल प्रॉपरली कुकिंग कर लिया करें, खाने का मैार जो है उसको बेहतर कर लें, पकाने का अंदाज जरा बेहतर कर लें। ये छोटी छोटी चीजें इनको देखा जा सकता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली जो है उनका एक चेकअप की जरूरत पड़ेगी कि रीजंस क्या हैं, फिर ही पता चल पाएगा।
कोई रूहानी इलाज बता दें?
रूहानी इलाज इनके लिए ये है कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है या हय्यू, ये 1000 मरतबा पढ़कर जब तक ये रहता है इनका सिलसिला तो ये पढ़कर दम करते रहे। अल्लाह ने चाहा तो जो इनका पीरियड है ना मर्ज का अल्लाह के हुक्म से वो उससे पहले सही जाएगा।
कुछ आप फरमाएंगे?
जी सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें गन्ने का इस्तेमाल जो है बहुत फायदेमंद होता है
जबकि शुगर ना हो।
जी
यही है ना।
गन्ने का इस्तेमाल इसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से मूली का सालन बनाकर खाया जाए, मूली को इस्तेमाल किया जाए, खीरा है, ककड़ी है, इसमें ये भी असबाब हो सकते हैं कि जैसे बाद लोगों का काम ऐसा होता है कि गर्मी के अंदर काम करते हैं तो उसकी वजह से भी हीट बढ़ जाती है, या इसी तरह से ऐसा भी होता है कि कब्ज का मुसलसल रहना, तो ये भी फासिद मादे जब जमा होते हैं तो फिर ये इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसके लिए अरके गुलाब भी मुफीद है। अगर अरके गुलाब आपके यहाँ मिलता हो तो वो हरके गुलाब आधा कप और शरबत बजूरी, ये बहुत मशहूर है, किसी अच्छी कंपनी का आप ले लें, तो 3 चम्मच शरबत बजूरी के और आधा कप हरके गुलाब का, इस इन दोनों को मिक्स करके सुबह भी इस्तेमाल करें और शाम भी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इस हवाले से बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा इंशाल्लाह।
अल्लाह आप शिफा अता फरमाए, सारे मरीजों पर रहमत की नजर फरमाए,
आमीन।
कॉल माशा अल्लाह अज़्ज़वजल, निगरानी शुरा का बहुत ही प्यारा सिलसिला, मसाइल का हल। प्यारे निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि हुजूर, मेरे मदनी मुन्ने का नाम शेख इदरीस अत्तारी है, ये तकरीबन इनकी उम्र 2 साल है। ये मोबाइल के हवाले से बहुत ज्यादा जिद करते हैं, यानी मोबाइल को बहुत ज्यादा तलब करते हैं, तो इस मसले का हल अगर इरशाद फरमा दे तो मदीना मदीना।
अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आपके बच्चे को आपकी आंखों की ठंडक करे। अब 2 साल का बच्चा आज खुद तो मोबाइल का आदी नहीं बना होगा, पहले इससे रोने के रोता हुआ चुप कराने के लिए या इसको मसरूफ करने के लिए मोबाइल दिया गया होगा, डेफिनेट अंडरस्टूड सी बात लगती है। तो 2 साल के बच्चे को मोबाइल का सेंस कहाँ से आएगा, तो उसको दिया गया होगा और अब समझ आ गई होगी कि अभी इसको कान में, आंख में या किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है या मोबाइल का कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, तो अब इसको आदत हो गई है। जैसे दूध पीने के बच्चे को आदत हो जाती है तो वो दूध पीता है, मांगता है, रोता है, जिद करता है, तो भूख लगती है तो खाना मांगता है, तो अब इसको मोबाइल की भूख लगती होगी तो ये मांगता होगा। तो इसमें इसको अल्टरनेट दें, आप कुछ नहीं देंगे तो ये बेचारा फिर ये रोता रहेगा और चीखता चिल्लाता रहेगा, इसको कोई अल्टरनेट दें, कोई ऐसा मतलब के इक्विपमेंट अल्लाह करे मिल जाए वो दे दें जिसको मतलब वो देखता रहे और उसके वो मेडिकली नुकसान ना हो। यानी बच्चा, याद रखिएगा, मैंने पिछले भी कई प्रोग्रामों में अर्ज किया है कि बच्चा हो या बड़ा हो, अगर आपको एक आदत छुड़वानी है ना, अगर उस आदत को लत कहते हैं, वो आदि हो गया उस आदत का, अगर वो छुड़वानी है तो उसके साथ उसका कोई अल्टरनेट जरूर दिया। तो इसमें वो आदत छुड़ने में जो है ना एक मतलब एक अच्छा तरीका इख्तियार हो जाता है। तो बच्चे को अल्टरनेट दें, बच्चे को अल्टरनेट क्या दें ये अब देख लें। तो बच्चा बजती आवाज टक 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 टक, जैसे मैं उमूमन ये मिसाल देता रहता हूँ, आवाज आ रही है, बजती आवाज, अब ये म्यूजिक तो नहीं है, बजती आवाज म्यूजिक नहीं बजाती, यार ये तो बोला था जो बच्चा हुआ वो चला देना, तो ये बजती आवाज हो, बच्चा खुश हुई है, अब यूं बजा दे रहे, बच्चे को मजा आ रहा होगा कि इसको एक आवाज आ रही होती है, ये साइकी है, ये बच्चों की एक साइकी है। बच्चा को कलरिंग में मजा आता है, ये कोई ऐसा कलरिंग कलर घूम रहे हो तो ये होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पहले क्या माए, अब तो पता नहीं क्या हाल है, माए बच्चे को लिटाकर वो पंखे के ऊपर दुपट्टा या चादर वगैरह डालकर हल्का सा पंखा चलाकर, जैसे बिल्कुल जैसे वो पंखा जैसे मरा मरा सा चल रहा होता है, तो ऐसा चला तो बच्चा जो कपड़ा देखता रहेगा, तो ये बच्चे की साइकी की उसको कोई ना कोई मूवमेंट, कलरिंग, साउंड, ऐसी कोई चीजें मिलेंगी ना तो ये होगा। तो अल्टरनेट आपको देना पड़ेगा और अल्टरनेट वही दीजिएगा जो एक तो गुनाह ना हो, अल्लाह की ना फरमानी वाला अमल ना हो और इसको फिजिकली नुकसान ना पहुंचा। तो मोबाइल से तो मेहरबानी करके आप दूरी रखिएगा, थोड़ा सा शायद हो सकता है कि जिद करेगा लेकिन फिर सेट हो जाएगा, क्या करेगा जिद करते करते भी। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे,
अल्लाह की रहमत से आप दादा भी हैं और नाना भी हैं, आपके घर में भी इस उम्र के बच्चे जो है वो हैं और कुछ बड़े हुए, तो आपने भी कभी इनको इस तरह कभी,
मैं तो पर्सनली तो मोबाइल का देने का वो
मोबाइल का नहीं, ये जो चीजें आपने बयान
की तो करता था। अभी ऐमन आ जाती है, ऐमन ये फेंकता था तो भागती भागती आ जाती है, इसको लेकर बैठी रहेगी या कोई और चीज पकड़ेगी, ऐमन हामिद की जो बेटी है, अब वो थोड़ी मतलब माशाल्लाह साल से ऊपर निकल गया उसको, तो वो थोड़ा बहुत चल भी लेती है और तो फिर आ जाती है यहाँ वहाँ। तो अभी मिखदाद जो बगदाद रजा के वो तो अभी गोद वाले ही हैं, तो उनका इतना इशू नहीं है, लेकिन जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, अच्छा तो बहुत लगता है, चला चला चला, फिर चल चल के जहाँ जहाँ जा रहा होता है ना, तो फिर पता है किचन में घुस गया तो इधर चला गया तो दराज खोल के खड़ा हो गया, अब जो मसला होता है ना अच्छा बहुत लगता है, फिर परेशानी भी बहुत होती है। तो ऐसे में बच्चे को, अच्छा बच्चे को चाहिए होता है, हमारे हमारे घरों में ये शायद निजाम नहीं है, मैं बच्चों वाले घरों के लिए कह रहा हूँ, बच्चों को कोई चीज दे दो बस, ये बैठे हैं, इनको कुछ एक्टिविटी देनी पड़ेगी। ये उठ गया है, अब क्या कर। अच्छा बात, बच्चे होते हैं मेडिकली तौर पर वो बैठे रहते एक जगह पर, तो उनके माँ बाप भी शिकायतें करते, बोलता नहीं है, चलता नहीं है, उछलता कूदता नहीं है। अच्छा फिर अगर ये ज्यादा बोलता है, ये बहुत बोलता है, बहुत उछलता कूदता है, ये बैठता नहीं है। तो हमने 9-10 में एक सबक पढ़ा था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। तो अब देख रहे ये बच्चे रौनक होते हैं। अल्लाह ताला आपके और हम सबके बच्चों को नजर बस से बचाए,
आमीन।
तो अल्टरनेट के साथ रहे तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी यूं चलते रहेंगे।
हम चूंकि लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं, मैसेज आया कि बारह मैसेज आया, आपके हाथ में जो तस्बीह है वो मुझे दे दें, मैं रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ूंगा।
दुआ करें।
कॉल चलाएं।
हाँ जी इमरान साहब, मेरा कुछ मेडिकली मसला है। मुझे किसी हकीम साहब ने बताया था कि आप जो है खजूर का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह दर्द में अफाका होगा। तो मैं तकरीबन 4 साल से खजूर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वाकई फायदा भी हुआ है। पहले मेरे जोड़ों में दर्द रहता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि दर्द के अंदर बिल्कुल दर्द समझने खत्म हो चुका है जोड़ों का। मगर अब सुबह में उठता हूँ तो पाँव के तलवों में दर्द होता है और एड़ियों में दर्द होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है कोई टेबलेट इस्तेमाल करूं, तकरीबन 4 साल हो गए कोई टेबलेट इस्तेमाल जब से नहीं किया, जब से खजूर का किसी हकीम ने मशवरा दिया है। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज ये करूंगा कि मुझे कोई ऐसी हकीमी हिकमत वाली कोई जड़ी बूटी का बताएं जिसको मैं इस्तेमाल करूं तो दर्द मुकम्मल खत्म हो जाए। मुझ पे कमजोरी बहुत है, ये कमजोरी की वजह इसकी क्या है, क्या डॉक्टर को मुझे दिखलाना पड़ेगा? मगर मेरा मसला ये है कि मैं डॉक्टरी दवा से जो है दूर भागता हूँ। आप मेरा ये मसला हल कर दें, अल्लाह आपको जदाए खैर अता फरमाए, और कोई हिकमत वाली दवा आप मुझे बताएं तो मुझे उससे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको जदाए खैर अता फरमाए।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। डॉक्टर क्या कह कर आप हिकमत की दवा मांग रहे हैं, नाराज ना हो जाइए, हम जड़ी बूटी नहीं देते भैया, ये जड़ी बूटी वाले डॉक्टर साहब के करीब बैठे हुए हैं। आप खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, गमे मदीना जैसी अजीम नियमत से सरफराज फरमाए। और एड़ी के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूँ, फिर हमारे खलील भाई देखें क्या आपको दवा तजवीज फरमाते हैं। मेरी कल चंद दिनों पहले ही एक डॉक्टर से किसी की एड़ी के मौजू पर मशवरा बातचीत चल रही थी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, अब ये दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, एड़ी के दर्द की कोई वो पेन किलर अलग है लेकिन एड़ी के दर्द का यूं कोई इलाज नहीं है, ये एड़ी जो है ना ये बस उसकी टेबलेट दे देते हैं, वो टेबलेट सब जगह दर्द की होती है, पेन किलर टाइप की चीजें होती हैं, मगर ये उसका उस प्रॉब्लम का हल नहीं है। उस एक तो चीज है कि बीमारी हो गई, अब उसके वजह से एक दर्द हो रहा है, तो वो दवा से वो दर्द तो दब जाएगा लेकिन वो चीज खत्म नहीं होगी। तो मेडिकली तौर पर जो मुझे समझाया गया है, बताया गया है, वो ये है कि इसकी मतलब इसका एक इलाज है, और ये इसके शूज और इसकी चप्पल और इस तरह की चीजें आती हैं जो बनती हैं कि ये एहतियात होती है कि अब एड़ी को ये किस तरह मतलब कवर करना होता है शूज और चप्पल वगैरह के जरिए। और ये एक मेडिकली ये मेडिकेटेड शूज इसको आप कह लें, या आते है ये भी थोड़ा सा मतलब कि वो नाजो अंदाज वाला काम और पैसे भी लगता है, मैं ठीक ठाक लेते होंगे। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर बाद जगहों पर ऐसे मेडिकेटेड बने हुए हैं कि जहां पर थोड़ी बहुत ऐसी फिजियोथेरेपी टाइप की चीजें की जाती है जिससे वो एड़ी के दर्द को या इस तरह के दीगर दर्द का इलाज किया जाता है। इसमें मेल मेल के लिए है, फीमेल फीमेल के लिए होती है, ये है मेरी जो मालूमात है, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। मैं कराची के लेवल पर बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में कहाँ क्या है ये मेरे इल्म में नहीं है। तो ये तो चंद चीजें थी। फिर ये के आराम पूरा कर लेने से भी, ये मैं अपने तजर्बात अपने मुशाहदों की बात कर रहा हूँ, आराम पूरा कर लेने से भी फर्क पड़ता है। आप अगर चप्पल पहनकर चलने की कोशिश करें, एक आरामदेह चप्पल ले लें और चप्पल पहनकर चलने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि इससे भी आपके एड़ी के दर्द में फर्क हो। यानी अगर एहतियातें करने से, परहेज कर लेने से अगर बीमारी दूर होती हो ना, तो फिर हिकमत वाली दवाओं से भी बंदा बचने की कोशिश करेगा। दवा फिर भी दवाई होती है, चाहे वो हिकमत की हो या एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की हो, और कोई ऐसा वजीफा ले लें जो दम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के रूहानी इलाज में एक धागा डोरी दी जाती है, काली डोरी होती है, उसको दम करके दिया जाता है। तो इसके भी फवाइद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चलते हैं कि इसके फवाइद होते हैं कि हाथों में प्रॉब्लम होता है या पाँव में प्रॉब्लम होता है, सारा होता है, तो काला डोरा हमारे यहाँ पढ़कर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लेते दावत इस्लामी वाले, तो ये दिया जाता है। तो ऐसा को रूहानी इलाज कर लिए, मैंने चंद चीजें अपनी तरफ से अर्ज की हैं। इसमें अगर डॉक्टर साहब कुछ प्लस करना चाहे तो कर दें, माइनस करना चाहे तभी कर सकते हैं, ठीक है। फिर खलील भाई से पूछते हैं कि क्या फरमाते हैं, और कोई दम वगैरह हजरत इरशाद फरमा देंगे।
इसमें एड़ी के हवाले से भी बात की, दो तीन बड़ी वजूहत होती हैं एड़ी में दर्द की, कि जैसे आपने फरमाया, एक तो ये है कि बुनियादी चीज ये होती है कि जो आप चप्पल वगैरह पहन रहे हैं क्या है वो स्टैंडर्ड की है या कि नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि चप्पल इतनी घिस चुकी होती है कि वो डिसबैलेंस हो रहा होता है पैर, जिसकी वजह से आपको एड़ी में तकलीफ होने लग जा रही है, या फिर चप्पल ऐसी होती है जिसकी हील बनी हुई होती है और वो डिप होती है, अंदर दब जाती है, तो वही चलाए जा रहे होते हैं उसकी वजह से एड़ी में तकलीफ हो जाती है। बाज़ औक़ात हील वाली चप्पल पहनते हैं उसकी वजह से तकलीफ, तो एक बुनियादी चीज है, पहले उसको नोट कर लें।
प्रोफेशन भी ना, हाँ, क्या करते हैं ज्यादा देर खड़े होने,
एग्जैक्टली, ये भी एक रीजन जाती है इसके अंदर की काम, अगर खड़े रहने का ज्यादा काम है, और फिर ये है कि वो अगर नंगे पैर खड़े हो रहे हैं तो उसको भी देख लेंगे कितने।
अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो फरमा रहे, मैं भी इनके साथ बैठ बैठ कर कुछ समझे समझ आ जाती है या बोलना सीख जाते हैं थोड़ा बहुत। ये जरूर मैं अर्ज करूंगा तमाम देखने सुनने वालों को कि खुद अल्लाह आपको और हम पर, अल्लाह ताला के आप पर हम पर रहमत हो, ये जो प्रॉब्लम्स या डिजीज या मसाइल या बीमारियां आती है ना, मेहरबानी करके स्पेशली बीमारी के ताल्लुक से को सबसे पहले, जो आप बीमार हैं, मैं आप बीमार आपसे बात कर रहा हूँ, और या आपके करीब का जो नुमाइंदा है ना उससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बीमार है ना, सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि मैं बीमार हुआ क्यों, वैसे ये तो अल्लाह ही की मर्जी होती है, अल्लाह के हुक्म से होता जो हो रहा होता है, लेकिन मेहरबानी करके सबब को पहले ढूंढे, गौर करें ऐसा क्या खा लिया, कहाँ चल गया, ऐसा क्या हो गया, कहाँ बैठ गया, क्या चीज उठा ली थी, किस करवट सो गया था, सबब को ढूंढे और सबब को दूर करें। दवा के दवा जो है ना, इसको आप समझें कि आप पहले सबब को ढूंढे, नंबर वन, सेकंड सबब को दूर करें, सबब ढूंढा ये वजह थी, अब वजह को दूर करें और वेट करें कि ये वजह दूर करने से फर्क पड़ना चाहिए, उसके बाद फिर इलाज जैसे दवा वगैरह की तरफ जाएं। मेरे रब की रहमत शामिल आ ले तो आपको नेक्स्ट भी ये चीजें नहीं होंगी, वरना दवा खाते रहेंगे और वही बेएहतियाती का सिलसिला जारी रहेगा, तो दवा आपको टेम्परेरी तौर पर तो रिलैक्स मोड में तो ले जाएगी, लेकिन आपको फिर दोबारा उसी तरफ आना पड़ेगा, फिर दवाई के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, गुर्दे पर तो फला पर तो फला पर ये अटैक करते रहती है, तो ये है। तो ये डॉक्टर साहबान जो फरमाते हैं ना, ये कहते रहते हैं, हमारे हकीम साहब भी कहते हैं, ये रूहानी इलाज, ये कहीं नोट कर लिया करें और ये अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर के इसका प्रैक्टिकल किया करें कि यार ये एहतियातें करके देखो फिर क्या होता है। मैं जाती तो पर्स कर रहा हूं, मैंने इसके जाती अपनी जिंदगी पर, अपनी फैमिलीज पर मैंने इसके तजर्बात किए हैं, जो आप देख कर सुन कर सीख कर समझ कर कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पर्सनली मेरी जात में और मेरी फैमिली में मुझे फवाइद मिले, इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैं सबसे बुनियादी वही अभी आगे बढ़ रहे हैं, आप एडी का हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ।
ये तीन चार बुनियादी फिजियोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि ये रीजन हो सकती है। फिर ये है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो बड़ी रीजन जो है वो नजर आती है। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात हील के ऊपर जो है, जो आपकी हड्डी होती है स्पर बन जाते हैं, यानी कि एक हड्डी नुमाया हो जाती है जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो तकलीफ होती है, वो डायग्नोस करना पड़ता है कि वो वजूहत नहीं है। जब वो वजह होती है तो फिर उसमें वो चीज काम आती है जैसे आपने फरमाया कि शूज वगैरह बनते हैं उसके, उस तरीके से उसको किया जाता है। अगर उसके अंदर स्पर वगैरह बना होता है तो फिर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाता है, वो रीजन की वजह आ रही है। अगली रीजन जो होती है वो यूरिक एसिड वगैरह जो है वो उमूमी तौर पर बढ़ जाता है, खुराक की वजह से गिजा ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर आप उस डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं तो यूरिक एसिड को नॉर्मल,
यूरिक एसिड की वजह से भी एडी में दर्द होता है,
यूरिक एसिड को अगर नॉर्मल कर लेते हैं तो ये तमाम चीजें आपकी कंट्रोल में आ सकती है। बुनियादी चीज वही होती है कि जो जब तक वजह को आप नहीं देखेंगे, उस वजह को नहीं रूल आउट करके खत्म करेंगे, जब तक वो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी।
यूरिक एसिड का बेसिक इलाज एक परहेजी तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि रेड मीट से बचें, बड़े के गोश्त से तो बिल्कुल बचे, हो सके तो छोटे के गोश्त से भी बचने की कोशिश करें, सब्जी पर ज्यादा डिपेंड करें, पैदल चलें और पानी ज्यादा पिएं। ये चार पांच एहतियातें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो यूरिक एसिड वाला वो नीचे आ जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मेडिकली जो फिगर चलता है कि ये कम है या ये ज्यादा है, तो जैसे पाकिस्तानी जो लेबोरेटरीज होती है उसके हिसाब से मैं करूँगा, आपका यूरिक एसिड 7 से नीचे होना चाहिए। अगर 7 और या 7 पॉइंट समथिंग ऊपर हुआ तो दैट मीन्स आपका ये ऊपर चला गया, मतलब आप बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर गए। कोशिश कीजिए कि आपका यूरिक एसिड 6 और 5.5 और 6 के आसपास रहे तो है डॉक्टर साहब, ये ज्यादा बेहतर है ना।
लैब्स की एक स्टैंडर्ड यही है, तकरीबन 6.5 अपर लिमिट पे आती है और बाज लैब्स की 7.1 पे अपर लिमिट पे आती है। तो मुख्तलिफ लैब्स की अपनी अपनी एक होती है। अगर हम हाइट लेते तो वो 7 तक हम ले लेते हैं कि 7 तक तो आपका होना चाहिए, 3.5 से आप स्टार्ट करके 7 तक लेके आ सकते हैं।
قبلہ
نگران شورا اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ تفصیلی کلام فرمایا ہے، تو میں آپ نے انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کمزوری بھی ہے مجھے، جسمانی طور پہ کمزور ہوں تو یہ پٹھے وغیرہ اعصاب وغیرہ کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کر لیں کہ اسگن ناگوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ آپ لے لیں، اور دوسری چیز ہے دار چینی۔ یہ دو چیزوں کو آپ، ہم وزن لے لیں مثال کے طور پہ 100-100 گرام آپ لے لیں اور ان کو پیس کر صبح اور شام ایک ایک چمچ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا انداز یہ ہے کہ دونوں چیزیں 6-6 گرام لے کر اس کو ایک گلاس پانی کے اندر ابال لیں اور پھر جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ باقی جو تفصیلی کلام ہوا ہے اس پر بھی
آپ کچھ فرمائیں گے؟
جی، روحانی علاج اس کے لیے یہ ہے کہ چلنے پھرنے کا ہی کام، چلنے پھرنے کی وجہ سے ہی ایڑی میں درد ایک سبب بن رہا ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غنیو، اس کا ورد جو ہے وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل درد میں سکون محسوس ہوگا انہیں۔
چلتے پھرنے کی وجہ سے ایڑی میں درد ضروری نہیں ہوتا، ہاں ایڑی میں درد چلنے پھرنے نہ، یعنی میں اپنا بتاتا ہوں، چلیں میرا چلنے پھرنے کا کام نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کے سامنے یہ اتنا نہیں ہے، مشورے کرو، لکھو یا بیان کرو، یہ بھی آپ کے سامنے، میرے پر ایسا ہے ہی نہیں کہ میں بہت زیادہ چلوں پھروں۔ تو مجھے پچھلے دنوں ایڑی کا درد تھا، ڈاکٹر سلمان کو یاد ہوگا، اور آج اللہ کا شکر ہے میرے ایڑی میں درد نہیں ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ تو بس یہی ہے کہ وہ سبب ڈھونڈیں کہ کیوں ہوا ایڑی کا درد، تو اگر چلنے پھرنے کی وجہ سے بھی ہو تو پھر اس میں بھی احتیاط کی جائے گی ڈیفینیٹلی۔ تو آپ نے جو وظیفہ دیا ہے وہ چلتے پھرتے کرنے کا،
پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی ہر وقت، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
پڑھیں، کیا پڑھیں؟
یا غنیو،
ماشاءاللہ، غین سے،
غین،
یا غنیو، یہ پڑھیں۔ اس نام پاک کی ایک برکت میں آپ کو بتاتا ہوں، جو یا غنیوں کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا، اب مالدار سے مطلب اس کو غنی کر دیتا ہے، آپ یوں سمجھے تو غنی کر دیتا، مالداری مال سے بھی ہے اور مالداری دل سے بھی ہے، کہ اللہ کریم اس کے دل کو مال کی محبت سے ایسا بے نیاز کر دیتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ بات جو دل کا غنی ہو جاتا ہے اور وہ مستغنی ہو جاتا ہے، یوں مال کی محبت ہے اس کو۔ تو یہ اس کے مختلف وہ شروحات بیان کی جائیں گی، تو پڑھتے رہ کر یا غنی ہو، بڑا برکتوں والا نام ہے اللہ کریم کا۔
گزشتہ سلسلے میں تو نہیں تھا، اس سے پہلے میں تھا، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ کرم فرما دیتے ہیں، آ جاتے ہیں روحانی علاج والے، لیکن اگر یہ نہیں بھی آئے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی ہیں، آپ وظائف بھی
نہیں، ایسا میں کافی نہ میں کافی ہوں نہ میں چاہی ہوں، میں شربت ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا نا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ، تو یہ آپ اور ہم ہیں نا اکبر حسین، آپ اور ہم نا سن کر تھوڑا بہت بول لیتے ہیں،
جی
انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے سنا نہیں ہے، سنا ہوا آدمی سیکھے ہوئے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ سیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے زندگیاں میڈیکل کی فیلڈ میں گزار دی ہیں، وہ صبح دوپہر شام رات وہ حکمت جڑی بوٹیوں کے اندر وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اب ان کو تھوڑی اپنے پہنچ سکتے ہیں، یہ ان کا صبح دوپہر شام رات کام ہی ایک ہی ہے کہ یہ پڑھنا وہ پڑھنا، تو یہ ہوتا، تو ان کی اور ہماری کوئی برابری یا مقابلہ نہیں ہے، یہ اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، اور یہ ہمیشہ یہ کیمرہ تو تھوڑا بہت میں بھی پکڑ لیتا ہوں، کبھی بولنا تو نہیں آپ نے کیمرہ پکڑ لیا گھوڑو، تو یہ ہوتا ہے شروع میں جب مدنی چینل ہمارا جب نیا تھا تو کیمرے بھی پکڑتے تھے، یہ سوئچنگ مشین جو ہمارے پیچھے جو چلے سوئچنگ مشین بھی استعمال کیا ہے، کیمرے بھی استعمال کیے، तो ये सब किया हुआ है, लेकिन अब ये क्या वो जितने हमारे इंग्लिश जो बाय बर्थ अंग्रेज है उसकी ना हमारे इंग्लिश में कहा एक जैसा होगा या जैसे सीखा है, तो ये फर्क पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, मदनी माहौल की बरकत है। मैं आपको बताऊं, अच्छा मदनी माहौल की बरकत से मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, मेरे जितने सुनने और देखने वाले दावत इस्लामी वाले हैं, मैं इनसे अर्ज करूं कि मदनी माहौल की बरकतें जो है ना, ये असल दरअसल हकीकतन या रूहानी तौर पर ये मदनी माहौल के अंदर रचे बसे रहने से मिलती है। यूं समझिए कि समुन्द्र के किनारे पर बैठकर बंदा समुद्र की मौजों से लुत्फ हो सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जो मोती है ना, वो किनारे पे बैठने वाले को नहीं मिला करते, या सत्ते पर तैरने वाले को भी नहीं मिलते। ऊपर ऊपर से जो स्विमिंग करते रहते इनको मोती नहीं मिला करते, इनको स्विमिंग में थकन मिलती है, तो तरावट इनको भी मिलती है, गीले ये भी हो जाते हैं, लेकिन इनको वो खजाना नहीं मिलता जो समुन्द्र की तह में मौजूद है, ये याद रखिएगा। लिहाजा मेरी तमाम तर मेरे इस्लामी भाइयों से, इस्लामी बहनों से मदनी इल्तिजा है, दरख्वास्त करता हूँ कि दावत इस्लामी के मदनी कामों की ते में जाना सीखें, इसके अंदर जाना सीखें और डीप डाइव करें, फिर देखिए अल्लाह की रहमत से आपको कैसे कैसे मोती खजाने और नेमतें अल्लाह की रहमत से नसीब होती हैं। तो यूं मतलब मदनी माहौल में रच बस जाए। अब ये कैसे जाते हैं भाई गहराई में, किधर है इसकी गहराई? इसकी गहराई आपके यहाँ होने वाले 12 मदनी कामों में, इसकी गहराई आपके इस्लामी बहनों के होने वाले 8 मदनी कामों में। हमारे ये मदनी काम तकसीम है 12-8, इस्लामी बहन इस्लामी भाई ये मारूफ और मालूम है जो हमारे मदनी माहौल से वाबस्ता है, और इसको आप ओढ़ लें, सिर्फ मदनी चैनल चले और ये सारे काम करें, माशाल्लाह ये इसकी गहराई में ना, इसकी गहराई में आपको क्या क्या मिलेगा पता है? मोती जिसको बोलते हैं फराइज की पाबंदी, जो कीमती सबसे कीमती मोती, एक तो ईमान की मजबूती, फराइज की पाबंदी, वाजिबात की अदायगी, सुन्नतों पर अमल का जज्बा, मुस्तहबात पर अमल नसीब होगा, इल्म दीन हासिल होगा, अच्छा कल्बी और जहनी रब की रहमत से सुकून नसीब होगा, आपके रिस्क में अल्लाह की रहमत से बरकत नसीब होगी, आपको इशराक चाश्त मिलेगी, आपको अवाबीन के नवाफिन मिलेंगे, आपको तहज्जुद की नमाज अल्लाह की रहमत से मिलेगी, कुरान करीम की तिलावत करने की सआदत मिलेगी, अल्लाह की रहमत से आपको मैं कहूँ कि नफली रोजे रखने की सआदत मिलेगी। कई ऐसे इस्लामी भाई होते हैं माशा रजबुल मुरजब भी, उनको या तो पूरे महीने के शाबान के भी रोजे रखते हैं या फिर कुछ ना कुछ रखते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था डॉक्टर साहब, बड़ा प्यार मुझे आर्टिकल पसंद आया था, तो कुछ चंद साल हो गए मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा आर्टिकल। बाद आर्टिकल ऐसे होते हैं जिन पर जो ना ही पढ़ा, पढ़ना ही नहीं चाहिए वो, और बाद आर्टिकल वाकई एक ऐसे होते हैं कि जो यादगार भी होते हैं। ये उस आर्टिकल लिखने वाले ने वाकया लिखा था फ्रांस का, कि फ्रांस में एक स्टोर में, सुपर स्टोर में एक मुसलमान औरत पूरे पर्दे में, फुल विलिंग बोलो पर्दे के साथ वो शॉपिंग कर रही थी, घरों के लिए सामान खरीदा होगा, तो खरीदारी कर कर वो काउंटर पर आई पेमेंट करने के लिए, कंप्यूटराइज काउंटर होते हैं, उस काउंटर पर भी लेडीज बैठी हुई थी। अच्छा वो लेडीज जो बैठी थी तो उसका जो नाम था, जो एक बड़े स्टोर होते हैं उनमें नाम के टैग लगे हुए होते हैं, वो नाम मुसलमानों वाला था, तो वो जो खातून जो आई सामान लगकर पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए, तो वो टू टू करके वो कर रही थी सारा, तो सलाम भी किया उसने, सलाम का तबादला हुआ, तो उसको काउंटर पे बैठी को पता नहीं क्या हो गया, कहा कि तुम क्या करती हो, हमें रहने दो ना फ्रांस में, क्यों पर्दा करती हो, ये मैं भी तो बैठी हुई हूँ, मैं कौन सा पर्दा किया है, पता नहीं माहौल कैसा है, हालात कैसे है। यूं उसको झाड़ने लगी ना, वो बा पर्दा थी और वो खड़ी सुन रही थी। थोड़ी देर के उसने अपना जब निकाब हटाया ना, अंग्रेज थी और उससे उसको उसकी जो भी जबानों के से समझाया के बोले, बोली मैं मुसलमान नहीं थी, لیکن اسلام کا پردے کا نظام جو عورتوں کو اسلام نے دیا ہے یہ پڑھ کر میں مسلمان ہوئی ہوں.
واہ.
اور میں نے اس پردے میں اپنی عزت کو اور اپنی حفاظت کو پایا ہے اور اس میں مجھے میری عظمت نظر آئی ہے. میں مطلب میں پردہ پڑھ کر تو مسلمان ہوئی کہ اسلام میں کتنی پیارے طریقے سے پردے کا حکم ہے. اور تم تو وہ بائی برتھ مسلم تھی تو تمہیں قدر نہیں ہے کہ پردہ کتنا اہم ہوتا ہے. تو یہ جو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں پردہ فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ یار ہمیں با پردہ کیا گیا ہے عورتوں کے لیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے کیونکہ پردہ ہے نا یہ انسان کو کور کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب پردہ انسان کو کور کرتا ہے. یعنی ایک نیچرلی چیز ہے کہ جب مٹھائی کھلی ہوتی ہے نا تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے. یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا. آپ کو میٹھی چیز کھلی رکھ دیں اس پر بار بار آ کر مکھی بیٹھے گی اب یہ مسا کر دو بھائی مٹھائی کی ٹک یہ کھلی رکھ دیں آپ تو اس پر بار بار آ کر مکھی بیٹھے گی نا. آپ مکھی ہٹائیں گے پھر بیٹھے گی پھر مکھی ہٹائیں گے پھر بیٹھے گی پھر مکھی ہٹائیں گے. آپ کب تک مکھی ہٹاتے رہو گے؟ اب مکھی کی برائی کرو گے نا کہ مکھی ایسی مکھی ہے ہی ایسی نا. ہر مکھی کہاں آ کر بیٹھ رہی ہے؟ ایک اور مکھی ہے جو نہیں آ رہی ہے اس وہ دوسری جگہ پہ جا کر بیٹھ رہی ہے پھولوں پہ جا کر بیٹھ رہی ہے. مگر یہ مکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ گندگی کر رہی ہے. اب آپ کو اگر اس مٹھائی کو اس سویٹ کو اگر آپ کو اس مکھی سے بچانا ہے نا یہ بچ گئے. یہ مٹھائی تھی جس کو بار بار آپ مکھی سے اس کو بچاتے رہے ہٹاتے رہے مگر یہ نہیں بچا سکے آپ اس مٹھائی کو. اگر آپ اس مٹھائی کو یا اس کوئی بھی چیز کو جس کو آپ کو مکھی سے یا گندگی سے دھول مٹی سے بچانا ہے تو اس کے لیے اس کو کور کر لیں. یہ بچی اب آپ فری ہو کر بیٹھے اللہ کا شکر ہے. کوئی جائے کدھر سے جائے گی؟ عورت کے لیے یہ پردہ ہے. عورت تحفظ میں آ گئے انشاءاللہ. اب اس کے اوپر کوئی میلی نظر میرے رب نے چاہ تو نہیں پڑے گی. تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ پردہ دیا ہے. پردے کا ذہن دیتی ہے. پردہ تو اسلام و دین نے کا حکم میں آ چکا ہے مگر ظاہر ہے جیسے پتا ہے کہ موت آنی ہے پھر بھی موت کا بیان اثر کرتا ہے نا. پتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی نماز کا بیان اثر کرتا ہے نا. اس طرح عورت کو پتا ہے کہ پردہ ہے ہی میرے لیے. مرد کے لیے پردہ تھوڑی ہے پردہ ہے ہی میرے لیے. تو اس کو پردے کا بیان کرو اور باپ پردہ اسلامی بہن جب وہ دیکھتی ہے نا کہ یہ بھی پردے میں برکے کے اندر ہے اپنے آپ کو کور کر کے چلتی ہے یہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ یہ بھی کسی سوسائٹی کے اندر ہے. تو یوں دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کی تے میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ قیمتی موتی ملیں گے. تو یہ کچھ باتیں میں نے دعوت اسلامی کے ماحول کے مطابق کے تعلق سے عرض کر دیا. وقت تھوڑا زیادہ لے لیا معذرت. جی
سلسلے کو آگے لے کے چلے.
بالکل میں نے پیچھے تو لے کر میں بھی نہیں گیا.
میسج ہے کہ میرے ماموں کو بخار ہوا تھا تیز. انہوں نے انجیکشن لگوایا تھا تو ان کی ٹانگ میں سوئلنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب وہ ڈبل ہو گئی ہے حتیٰ کہ اب درد کی وجہ سے وہ بیڈ ریسٹ بھی جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. دعا بھی کر لیں.
اللہ شفا دے اللہ تندرستی عطا فرمائے. اب یہ انجیکشن کی وجہ سے ہے یا کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر سلمان
عموماً جو اس طرح انجیکشن لگ جاتے ہیں نا تو لگنے کے بعد سوجن آ جاتی ہے سویلنگ آ جاتی ہے. کبھی غلط طریقے سے انجیکشن لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو اس پہ برف لگا کے نا آئسنگ کا عمل اس کو بولتے ہیں ٹکور کر لیا جائے. برف یعنی کسی کپڑے میں لے کے یا کسی چیز میں لے کے اس کو آئسنگ کرتے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا وقت لیتا ہے.
تو وقت لیتا ہے. اچھا ایک اس موضوع پر ایک حکمت اور تجربے کی بات عرض کرتا ہوں. انجیکشن اس سے لگائیں جس کو انجیکشن لگانے کی پریکٹس ہو. یعنی بڑا ڈاکٹر ہے نا بڑا ڈاکٹر. اب یہ ڈاکٹر سلمان ہے نا یہ آپ انجیکشن لگائے کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ وہ
کالے ہو
انجیکشن ہی لگایا ہوگا. حالانکہ یہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کامران کو شاید تجربہ ہوگا. روزانہ کی بنیاد پہ لگاتے ہیں کیونکہ اچھا یہ دونوں ڈاکٹر ہیں مگر ان کی جو میڈیکلی روٹین ہے نا اس میں ڈریپ انجیکشن یہ سب آ رہا ہوگا. تو یہ इंजेक्शन लगाने में ये यूज टू भी आदि है और प्रैक्टिस है। डॉक्टर सलमान को इंजेक्शन लगाए प्रैक्टिस, हाँ ये कुछ और ही, ये फिर वो काम करेंगे जो शायद डॉक्टर कामरान की प्रैक्टिस में ना हो। तो हर एक, क्योंकि बाज डॉक्टर एग्जामिन बहुत अच्छा कर लेते हैं और बहुत बहुत सारे काम कर लेते हैं, बेहतर तो यही है कि कंपाउंडर से इंजेक्शन लगा लिया जाए। सीधी बात है, डॉक्टर ये बड़े डॉक्टर से इंजेक्शन लगाऊंगा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर को 12 साल हो गए, इसने इंजेक्शन पकड़ा नहीं, बेचारा लगाएगा किधर से। तो ये तो ऑपरेशन भी करते तो बाकी चीजें और ही लगा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, सर्जन साहब इंजेक्शन थोड़ी लगाते हैं बेड पर लेटे मरीज को। तो लेकिन इंजेक्शन इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत लगाए हुए होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि जैसा मिले सुनत उमूमन फरमाते हैं कि फतवा उनसे पूछो जो फतवा नवेसी कर रहे हो, यानी फतवा लिख रहे हो, इफ्ता से वाबस्ता हो, फतवा नवेसी से वाबस्ता हो, कि वो उनका काम भी रोजाना की बुनियाद पर फतवा देना और फतवा पढ़ना हो, तो उस वो ज्यादा बेहतर तरीके से फतवा दे सकते हैं कि उनकी प्रैक्टिस है ना। ये सबके लिए, ड्राइवर के लिए भी यही है। अब एक आदमी ने ड्राइविंग सीखी है, वो 12 सालों से गाड़ी नहीं चलाई, या बोलोगे यार इतना पुराना गाड़ी चलाने वाले इसके साथ बैठते हैं, तो वो जब चलाएगा तो झटका ही मारेगा शुरू में, यार ये कैसा है, तो वो भी झटके खाएंगे। तो ये जो रूटीन के काम करने वाले होते हैं ना, यूं समझिए कि एक्सपर्ट ढूंढे, एक्सपर्टीज ये बहुत मैटर करती है, उनसे इंजेक्शन लगाए। मैं हाल ही एक पेशेंट का मतलब के बारे में मुझे मालूम आता है कि वो गलत इंजेक्शन लग गया बेचारे उसके, वो तो वो प्रॉब्लम हुआ, यानी उस एक इंजेक्शन की वजह से एक मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा अलग हुआ, और वो सिर्फ सोजिश नहीं हुई, वो पूरे के पूरा रिएक्शन हो गया इंजेक्शन की वजह से। तो वो जगह गलत हो जाती है तो बाद अवकात वो प्रॉपर नहीं होता। मगर ये जरूरत कर दूं कि ये बेतवज्जोही की वजह से ऐसा हो जाता है, कोई डॉक्टर या इस तरह का कोई भी इंजेक्शन लगाने वाले इलाज के अंदर जानबूझकर कभी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता होगा। वो कैसे पहुंचाएगा, उसका तो प्रोफेशन है, उसकी तो रोजगार है, ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें उसकी गिबत नहीं करनी चाहिए कि यार अंधा था या मतलब बेवकूफ था या मतलब जाहिल था, आता नहीं था, इसमें उसकी गिबत नहीं, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। वो बेतवज्जो में हो जाता है, इनका प्रोफेशन है, जानबूझ कर थोड़ी को मरीज को मतलब के ज्यादा बीमार कर देंगे। तो ये मैंने एहतियाती बातें चंद्र
का, अगर कोई रूहानी इलाज पूछा है।
हाँ,
उन्होंने
रूहानी इलाज अमीर सुन्नत ने मदनी पंसूरा में तहरीर फरमाया है, अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अलीयु, ये 3 मरतबा पढ़ना है, पढ़कर अपनी सुजन वाली जगह पर दम कर दें। तो अल्लाह ने चाहा
3 मरतबा जी, माशाल्लाह,
अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ
सुभानअल्लाह।
मैसेज है कि खाने के इख्तिताम पर पानी मना है ना, अगर खाने के इख्तिताम पर बंदा अगर चाय पीता है तो क्या ये वो पानी के उसमें?
चाय पानी नहीं है।
अच्छा,
चाय पानी नहीं है, चाय चाहिए।
ठीक है, अच्छा कॉल शामिल करते हैं।
सही जहन तेज करने को भी नुस्खा फरमाया,
जहन तेज करने का नुस्खा।
अच्छा, कमजोर चाहे जहन हो या बदन हो, बल्कि लफ्ज कमजोर है ना, ये नुकसान ही पहुंचाती है, चाहे वो रूहानी कमजोरी हो, ईमानी कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी हो। कमजोरी कह सकते, कमजोरी नुकसान पहुंचाती है। एक तो कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें, और जहन को कवि करने के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कोई रूहानी इलाज बताएं, बल्कि खलील भाई से भी अर्ज करूंगा कि कोई हिकमत की बात फरमा दें। चलो भाई, हमजला बाबा आ गया,
रूहानी इलाज
सिद्दीक बाबा भी आ गया, इधर इधर
इधर इधर। सुन्नत ने तहरीर फरमाया मदनी मंसूरा में कि नमाज की पाबंदी करते हुए हर नमाज के बाद सर पर इस तरह हाथ रखकर 11 मरतबा पढ़ें अल्लाह पाक का सिफाती नाम या कवी। ये 11 मरतबा पढ़िए हर नमाज के बाद, वो पढ़कर अपने पर दम भी कर लें। अल्लाह ने चाहा तो आपका जहन कवी हो जाएगा, इसकी कमजोरी दूर हो। या कवी,
या कवी,
11 मरतबा पढ़ना है हाथ रख के।
कब?
नमाज के बाद, हर नमाज के बाद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए सबसे पहले तो ये किया जाए कि नींद जो है ये पूरी की जाए, नींद का इससे बड़ा ताल्लुक होता है। और दूसरी बात यह है कि खाने और पीने का जो है इसका ख्याल किया जाए, एक तो वक्त पर होना चाहिए और फिर सुबह का नाश्ता जो है ये अच्छा होना चाहिए, बिलखसूस सुबह जब उठे तो इसमें एक अच्छी गिज़ा इंशाल्लाह अज़्जल होगी, तो इससे भी बहुत फायदा हासिल होता है।
बाकी जैसा भी आपने कहा ना, मेरी अभी हाल में मैंने एक तहकीक पढ़ी है, वो तहकीक मैं आपके सामने बयान करता हूँ। और इससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और जनरल डिस्कशन है ये, 100% में मैं बात नहीं करता, जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि नाश्ता ये थोड़ा हेल्दी होता है, लंच इसे हल्का होता है, डिनर बिल्कुल हल्का होता है। ये तहकीक है और सेहतमंद रहने के लिए ये बयान किया गया है। तो ये चीजें जरूर, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ नाश्ता हल्का है, लंच उससे हेवी है, डिनर उससे हेवी है। यानी जब पूरा दिन काम करना है तो जो आपने गिजा लिए, एनर्जी लिए, वो बहुत कम लिए, और जब रात को कोई काम नहीं करना उस पर डिनर आपने बहुत ठीक ठाक ले लिया, अगर रात का खाना बहुत होना चाहिए उसमें अगर दावत हो तो गई ना, वो ना मुर्गियों की खैर है ना मछलियों की खैर है, तो फिर तो ना बिरयानी बचेगी, ना कोरमा बचेगा, ना ताफ्तान बचेगा, ना तंदूर की रोटी बचेगी, और बोतल तो दो दो पीनी पड़ेगी क्योंकि लिफाफा भी तो दिया है अपनों ने। तो ये सारी चीजें, तो ये दावत तो जनरल बात कर रहा हूँ। तो अभी हकीम हमारे जो खलील भाई ने जो अभी जैसे फरमाया ना कि नाश्ता ये एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और एक अच्छा नाश्ता होना चाहिए, मगर वो सेहतमंद हो। अच्छा, अच्छा नाश्ता या अच्छा खाना जब भी बयान किया जाएगा ना, इससे मुराद सेहतमंद खाना है, ना कि भारी भरकम खाना हो और खूब तेल और घी में मतलब कि गोते लगाता हुआ खाना हो, ये थोड़ी सी जरूरत है। तो ये तहकीक जो है ना, मुझे तो बहुत समझ में आई कि जब पूरा दिन काम करना है तो आपकी जितनी कैलोरीज हैं वो काम करते करते बर्न हो जाएंगे, वो खत्म होती चली जाएंगी। और रात को सोने से पहले एक आप एक नॉर्मल सा खाना खाएं, वो भी इतने पहले खा लें कि फिर नींद से नहीं तो नहीं को 3-4 घंटे पहले खा लें, ताकि ये फिर आपको सुकून की नींद भी आएगी इंशाल्लाह और सेहतमंद रहेंगे। अब ये जर्नल है तो अब जिनको नाश्ता ही बेचारे वो जो उठते इतने बजे के, वो नाश्ते की जगह अब ना लंच है ना ब्रेकफास्ट है, अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, वो है ब्रंच। ब्रंच ब्रंच नई इस्तेला आई है, ये उन हजरात के लिए इस्तेला आई है कि जो उठते हैं ना तो ना ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है, वो 12 बजे वाले लोग हैं यूं समझिए आप, तो वो उनका खाना भी मिक्स होता है, उनमें थोड़ा बहुत नाश्ते का भी तड़का होता है और उनमें लंच का भी जायका होता है, जो ये चल रही है आजकल हमारे यहाँ, ऐसा ही है। क्यों
बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई हमारे यहाँ, जैसे चले ठीक है नाश्ता तो अच्छा कर लिया, मगर ये भी जैसे तजर्बाती तौर पे बताया जाता है कि हो भी जल्दी, सुबह जल्दी नाश्ता किया जाए ताकि जब सुबह
कहते
वक्त पर नाश्ता होगा तो फिर ये है कि जब बंदा काम पर जाता है या पढ़ाई के लिए जाता है तो फिर वो जब तक कुछ हजम होकर अपना एनर्जी जो है वो दे चुका होगा, तो अगर लेट नाश्ता किया जाए तो भी इतना फायदेमंद नहीं होता। बहरहाल नाश्ते के अंदर ये है कि मक्खन इस्तेमाल किया जाए, जौ का दलिया फायदेमंद है, जिन जहन तेज करने के लिए आप एक गिलास दूध और साथ में एक सेब इस्तेमाल कर सकते
हैं। मक्खन वाले को चेक करना पड़ेगा कि इसको कोलेस्ट्रॉल ना हो।
तो ये तमाम चीजों को नजर
रखा आप लोग, वैसे ये कोलेस्ट्रॉल है, शुगर और ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, इन सबको तो आप लिफ्ट नहीं कराते हो ना इतना?
नहीं नहीं
अच्छा कराते हो, अच्छा कराते हैं, चलिए आगे बढ़े।
नाश्ता आपका हल्का होना चाहिए, हलवा पूरी कितनी हल्की?
हल्का नहीं का नाश्ता सेहतमंद होना चाहिए,
सेहतमंद वैसे
और नाश्ता मतलब यू
हेल्दी और
मतलब कैटेगरी बने ए बी सी, तो नाश्ता ए है
सही,
लंच बी है और जो डिनर है ना वो सी है, रात का खाना इशा या जिसको बोलते हैं।
ठीक है, मैसेज है पूरी का इसमें। हाँ, हलवा पूरी कितनी हल्की होती है?
हल्की होती है
किसी मतलब रुई 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 की तरह होती है
आपके यहाँ होती है रुई रुई तेल और घी में तर बतर होती है, हलवा घी और तेल में तर बतर होता है, ये हल्की गिजा नहीं है।
तरीका तो मेरे रसूल ने दामन बरकातहू आलिया ने इरशाद फरमाया था कि ये जो तला हुआ अंडा जैसे आम सुबह खाते हैं तला हुआ अंडा, तो ये कई दफा सुना है कि ये किसानों की गिजा है जो मेहनत कर
पराठे वगैरह
तो फरमाया कि ये पराठे और अंडा जो है ये मैदे के पर पहाड़ से भी ज्यादा भारी।
घर की रोटी ना वर्षे में घर की रोटी जो हमारे यहाँ जो बनती है, घर की रोटी बहुत मुफीद होती है, घर की रोटियाँ। और इस तरह सुबह के नाश्ते में सब्जी, अच्छी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी अंडे और उबले हुए खा लें, वो आपको अच्छा मतलब प्रोटीन और सेहतमंद रखेंगे। फल का इस्तेमाल भी तो नाश्ते में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूरी फल नाश्ते का नहीं है, उठकर बंदा एक सेब खा ले उठते ही पहले निहार वो सेब खा ले, कहते हैं जो रोजाना एक सेब खाएगा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, केले खा ले तो यूं पेट के अंदर जब केला और सेब चला जाएगा तो एक ऑटोमेटिकली मैदे के अंदर एक एनर्जेटिक चीज चलेगी और मैदे की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपने फल से पूरी कर दी। गाजर पूरा कच्चा गाजर खा लें, तो यूं बहुत सारी ये चीजें हैं जिससे आप अपने आप को, ये हर इंसान की अपनी सोचने से वो अपनी चीजें को डिजाइन कर सकता है।
इसके लिए अगर वो नुस्खा अर्ज कर देता हूँ जहन तेज करने के हवाले से, तो 20 अदद किशमिश और 10 बादाम ये रात को पानी के अंदर भिगो कर रख दिया जाए, और सुबह जो है इसको बादाम अगर चाहें तो छील लें तो अच्छा है, बादाम भी खा लें और किशमिश भी खा ली जाए। तो जिन बच्चों को जैसे जहन कमजोर होता है दिमागी हवाले से, इंशाल्लाह दिमाग भी मजबूत होगा और नजर भी इससे तेज होगी। 20 किशमिश और 10 बादाम रात को एक गिलास पानी के अंदर भिगो कर रखते हैं, मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है, और सुबह जो है इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, पानी जो है वो पीने की हाजत नहीं। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैसेज है कद बड़ा करने का नुस्खा, इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं जिनका कद छोटा होता है, और दूसरा ये है कि बाज लोग भी जो है ना बड़े ताने देते हैं छोटे कद वालों को, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? बाकी इसका नुस्खा
ताना देना तो दुरुस्त नहीं है, इसमें तो दिल आजारी है और जहन्नम की हकदारी है। अल्लाह करीम हमको ताने देने और तंज करने से महफूज फरमाए। अब जिनके कद छोटे हैं तो अल्लाह की रिजा पर राजी रहें, नंबर एक, ये बुनियादी बात है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वो राजी रहें, और क्या पता कि इसी छोटे कद में ही आपकी दुनिया और आखिरत का भला रब ने रखा हो, तो एक तो अपने रब के बारे में ये अच्छा गुमान होना ही चाहिए। रही बात कद बड़ा करने की, तो कद बड़ा करने की दुआ या तमन्ना ये गलत तो नहीं कही गई है, क्योंकि ये आदतन हो जाता है। तो अब इसके लिए जारे के बाद एक्सरसाइज भी बताई जाती है लटकने वगैरह के ताल्लुक से, कि ये इससे भी लोगों के तजर्बात है कि इससे कद थोड़ा बहुत निकल आता है। मेडिसिन वगैरह भी शायद इसकी हैं, बयान की जाती है, हम डॉक्टर साहब बताएंगे।
इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर मेडिसिन तो नहीं,
कामयाब कोई चीज नजर नहीं,
ऐसी कोई चीज नहीं होती है बात, क्योंकि जेनेटिकली भी होता है कि आपके मोरोसी चीज चली आ रही होती
है,
मोरोसी जब चीज चली आ रही होती है तो फिर उसमें तब्दीली करना मुश्किल होता है। बाद वक्त ये होता है कि अंडर वेट होता है गिजा की वजह से, तो वहाँ तो हम इसको सेटल कर सकते हैं कि उसके गजाई पैटर्न वगैरह देख के उसको सेटल किया जा सकता है, या जैसे एक्सरसाइज आपने बताई वो करके किया जा सकता है, लेकिन अगर जेनेटिकली ये मोरिसी है तो फिर बहुत मुश्किल होता
है। अब देखिए मतलब के बाप का कद छोटा माँ का कद बड़ा, तो घर में देखा दो बच्चे हैं तो एक का कद छोटा होता है एक का कद बड़ा होता है, ये हो जाए, या बाप का कद बड़ा है माँ का कद छोटा है, तो बच्चे होते हैं बास के कद बड़े होते हैं बास के कद छोटे होते हैं, अच्छा बास बच्चे ना माँ के कद के बराबर ना बाप के कद के बराबर, वो दादा दादी नाना नानी के ऊपर जा रहे होते हैं, तो या बात मामू चाचा के ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी ये खानदान के अंदर से चीजें हो रही होती है कि कौन कहीं से किसका असर ले लेता है, और ये इस तरह की चीजें हदीसों में भी साबित है, रंग नक्शा कद काट के हिसाब से भी ये सारी चीजें, ये कहीं से भी खानदान का कोई ऐसा असर कोई भी बच्चा लेकर दुनिया में आ सकता है, तो ये चीजें होती कुदरती हैं। अलबत्ता जो थोड़ी बहुत चीजें थी कद बड़ा करने के ताल्लुक से, मगर वो भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी ऑथेंटिकेट नहीं जिसके बारे में कंफर्म कहा जाएगा ये करे तो ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
जब बहुत सारे नाजरीन नए होते हैं तो मैसेज कर रहे हैं कि आपके लेफ्ट और राइट पर जो बच्चे हैं वो कौन है?
ये मेरे सीधे हाथ पर जो नीचे ऊपर हो रहे हैं इनका नाम है सिद्दीक रजा,
ठीक है,
बिन हंजला बिन उबैस रजा, और इनका नाम है हंजला और बिन उबैस रजा, ये दोनों मेरे नवासे हैं
माशाल्लाह,
सिद्दीक और हंजला।
कॉल शामिल करते हैं।
सवाल ये कि घर में बच्चे होते हैं दो या तीन, तो उनमें आपस में बाज़ औक़ात वो एक दूसरे को मारपीट कर रहे होते हैं, कोई ऐसी कैफियत बनती है जैसे बाहर देखा होता है किसी को तो घर आकर वो उस पे एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इन बच्चों की वालिदैन तरबियत किस तरह करें, इनको किस तरह आपस में मोहब्बत भाईचारे से तरकीब इनकी बनाए कि ये आपस में छोटे बच्चे मोहब्बत के साथ तआवुन के साथ अपनी तरकीब चलाते रहे,
समझाते रहे, और जैसे कि अदब से पुकारना सिखाएं कि छोटा भाई है तो बड़े भाई को भाईजान, या इस तरह करके कोई अदब से सिखाए, फिर छोटे को बताए बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाते, बड़े को सिखाते रहे कि बेटा छोटे को मारते नहीं है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो लेकर बैठे रहे। खाली डांटने से नहीं काम होगा, लेकर बैठने से भी काम होगा। तो होता रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत देखें घर में ये चलता रहेगा, और तकरीबन घरों में ये चलता रहता है, और अल्लाह खैर करेगा। कभी कभी मतलब ये रौनक भी लगी रहती है घर के अंदर, तो ये थोड़ा इनको आपस में खेलाएं, आपस में दूसरे को पकड़ा पकड़ी करें खेलाएं, लेकिन ये गिर गिर ना जाए, एहतियात के साथ ये सारे काम करने पड़ते हैं ना। सही है ना, झगड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए ना। हैं है? आपके बड़े भाई कहाँ हैं? है? ये बड़े भाई हैं ना। आपके छोटे भाई कहाँ हैं? ये छोटे भाई हैं। ठीक है, तो यूँ है लड़ना अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, सिद्दीक भाई मना कर रहे हैं, लड़ना अच्छी बात है? नहीं है, लड़ना अच्छी बात नहीं है, ये मोटिवेशन है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये
अच्छा मैसेज है कि आंखों के गिर जो ये हल्के होते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है?
अब डॉक्टर साहब नकीम साहब कहेंगे इसकी एक वजह तो नींद की कमी है, दूसरी वजह शायद ये कहेंगे कि कमजोरी है, वकी आप बता दो। चलो
दो वजूहत तो आपने बताई दी, अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि बाज़ वक़्त पानी की कमी वगैरह भी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है,
बहुत मेडिसिन बिकती है।
हाँ
अच्छा,
हल्कों की है।
ये इसकी वजह
आप मदनी फूल दे दें इसको, कुछ
हल्कों की काले हल्के
क्रीम है
ऐसे अंदर ब्यूटिफिकेशन वाली जो क्रीमें होती है ना, क्योंकि ये तकरीबन हमारे यहाँ तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी में ये प्रॉब्लम आती है कि हल्के आ गए, आंखों गिर के आ गए। बाज़ औक़ात ये होती है कि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो स्ट्रेस लेवल की वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, रात के टाइम जो है वो जाग रहा होता है, जिसकी वजह से उसको परेशान होती है, खुराक प्रॉपरली नींद ले पाता है। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो अगर बात वही आती है कि जब तक आप रीजंस को नहीं ठीक करेंगे, वजूहात को नहीं ठीक करेंगे, तो वो मसाइल तो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। क्रीम्स वगैरह तो आप भले इस्तेमाल कर लें, आप जरूरी नहीं है उन क्रीम्स की वजह से हो सकता है वो आपकी स्किन को सूट ना करे, फायदे की जगह वो नुकसान भी पैदा कर सकती है। तो बेहतर ये है कि जो नॉर्मल चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, उनका ख्याल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल
करें। हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब मैं नहीं समझता कि अच्छी ब्रांडेड जो वाकई जेन्युइन जिसको आप क्रीम कहें एफोर्ड कौन करेगा,
मुश्किल का,
बहुत मुश्किल,
बहुत मुश्किल।
अब जो सस्ती क्रीमें मिलती होंगी वो उसका जो केमिकल का जो साइड इफेक्ट और रिएक्शन आता होगा स्किन पर, वो बस अब ये कौम को हम समझाने में इतने शायद कामयाब ना हो सके।
अभी जैसे 15 दिन में रंग गोरा करने की क्रीम,
कितने दिन में?
15 दिन।
15 दिन में क्या करेगा?
रंग गोरा करना।
रंग गोरा करे कितने घंटे के लिए?
अब ये इसका जवाब कौन दे, कौन
कितने घंटे के लिए रंग गोरा करेगा और फिर कितने सालों के लिए काला रखेगा?
हाँ, साइड इफेक्ट कितने हैं, स्किन कैंसर के केसेस,
फीमेल्स
में बिल्कुल
उसमें नहीं, ऐसे ही होता है कि बाज़ औक़ात प्रैक्टिकली देखा गया है कि वो वक्ती तौर पे वो नजर आ रहा होता है, स्किन पे फेयरनेस आ जाती है, लेकिन वंस विदड्रॉ करते हैं, उसको खत्म करते हैं, बंद करते हैं ना, तो फिर वो चेहरे पे मजीद उसके नुकसान जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, कोई ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, तो फिर एक तरह से वो समझ लें कि आप आदी हो चुके होते हैं, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता, तो कंटिन्यूसली आपके प्रोडक्ट्स को यूज करनी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से स्किन पे इफेक्ट पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात वही कैफियत है जैसे आपने बताया, स्किन कैंसर के बड़े चांसेस हो जाते हैं,
झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं।
दिल की सफाई, दिल की चमक, दिल की सुथराई, रूह की सुथराई और सोचों की सुथराई, ये चमकती दमकती हो क्या बात है। वैसे एक बात अर्ज कर देता हूँ, अगर चेहरे पर रौनक चाहिए ना, कशिश चाहिए आपको, तहज्जुद की नमाज पढ़े, तहज्जुद गुजार का चेहरा ये बार रौनक और चमकता दमकता होगा, पुरकशिश होगा इंशाअल्लाह। ये तो बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है, तो ये अच्छा इससे सब आ जाए, ये चेहरा चमकाने के लिए ना, कशिश पैदा करने के लिए तहज्जुद नहीं पढ़नी, तहज्जुद अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी, ये याद रखे, लेकिन सरकार की उम्मत पर ये करम हुआ है कि हम पर तहज्जुद फर्ज नहीं की गई है, मगर अजीम सवाब है तहज्जुद की नमाज में। अब तहज्जुद कब पढ़ें, क्या 12 बजे के बाद पढ़ें, ये नहीं है, तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है ईशा की नमाज के बाद। अगर आपने ईशा के नमाज पढ़ ली, या मैं कहूँ अगर फर्ज भी पढ़ लिए फॉर एग्जाम्पल, तो सुन्नत साथ पढ़ लेनी चाहिए, तो और उसके बाद आपने लम्हे भर की भी नींद ले ली ना, भले बैठे बैठे नींद आ गई, मगर वो हो नींद, जिसको नींद आना कहते हैं, नींद आ गई और आप उठ गए, अब तहज्जुद का वक्त शुरू है, चाहे वो भले 10 मिनट के बाद हुआ हो, वो भले 10 बजे हुआ हो, 9:30 बजे हुआ हो, ये भी हो सकता है। और तहज्जुद का आखिरी वक्त जो है ना, ये तहज्जुद के इब्तदाई वक्त है, इशा की नमाज से बाद शुरू हो जाता है कि अगर आपने इशा पढ़ ली है, और तहज्जुद का जो आखिरी वक्त है वो फजर का वक्त शुरू होने से तक है कि फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ लें। और ये जरूर एहतियात कीजिएगा कि ऐसे मौके पर तहज्जुद या नफल ना पढ़ें कि ये फजर के वक्त में दाखिल हो जाए, तो फिर इसके दीगर मसाइल आ जाते हैं, तो ये जरूर एहतियात कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम। नमाज में दिल नहीं लगता, इसका वजीफा
इलाज इसका अर्ज कर देते हैं। रात जब सोने लगते हैं ना, तो सोने से पहले अल्लाह पाक का सिफाती नाम या बाईसु, या बाईसु, ये 100 मरतबा पढ़ने की आदत बना लीजिए, इंशा अल्लाह इसकी बरकत से इबादत में दिल लग जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस करना ये है कि रात को जब सोने लगे तो सोने से पहले ये 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या बाईसु 100 मरतबा पढ़िए, अल्लाह ने चाहा तो इबादत में दिल लग जाएगा। अच्छा, जब लेटे होते हैं, लेटे लेटे कोई वीर्द अगर करना है आपको तो अपने पैरों को समेट लीजिए ना, समेट कर फिर कोई वीर्द करना हो तो कर सकते हैं।
सल्लु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। चाहिएगा कि सर्दियों में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और गर्मियों में भी कितने गिलास पानी पीना चाहिए?
डॉक्टर, काम की नोयत पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी हार्ड वर्किंग है, रोड पे काम कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हार्ड वर्किंग का काम ज्यादा होता है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट वहाँ ज्यादा हो जाती है। अगर किसी ठंडी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ अलग होती है, लेकिन एक नॉर्मल वैल्यू अगर आप रखते हैं वो कम अज कम, जैसे ठंडा मौसम है तो एटलीस्ट कम अज कम 6 से 8 गिलास तो पीना ही आपने, और अगर गर्मी का मौसम है तो इसको थोड़ा बढ़ा लें, इसको 8 से 12 गिलास पे ले जाएं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है आपकी, कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे पसीने का अखराज ज्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट बढ़ाते हुए चले जाएं। सिर्फ ये है कि पानी पीने के लिए प्यास का होना ना होना ये जरूरी नहीं होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हमें प्यास लगती है तभी हमें पानी की याद आती है, बसूरत अगर हम पानी नहीं पीते तो। अगर 8 से 10 गिलास के दरमियान का एक रेशो आप रखें तो मेरे ख्याल में ये दोनों सीजन में कम कवर
करने के बाद एवरेज बना ले, हर दूसरे घंटे में गिलास पी
तकरीबन,
ये एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, उठने के बाद हर दूसरे घंटे में एक गिलास पानी पीने का एक मामूल बनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक एवरेज आपकी कवर हो जाएगी।
आंखों के हल्के का जो था ना वो हिकमत वाला वो रह गया है। अच्छा, अच्छा, बताना अच्छा, था अच्छा। कुछ वहाँ है कुछ इलाज इसका?
क्या बात है, बताएं।
आलू बुखारे खुश्क आलू बुखारे होते हैं, इसका इस्तेमाल इस हवाले से मुफीद है। चिकनाई वाली चीजों से परहेज किया जाए, कलेजी पाए पराठे हलवा पूरी वगैरह, तो जिगर की खराबी भी इसका बाइस होता है। तो आलू बुखारे 5 अदद और एक जड़ी बूटी होती है, इसे कहा जाता है गुल मुंडी, अगर ये मिल जाए तो ये भी 5 दाने आलू बुखारे के और 10 दाने गुलमुंडी के, इन दोनों को, और छोटी हड़ होती है, हड़ बहुत मशहूर जो है जड़ी बूटी है, छोटी हड़ के 5 दाने ये भी शामिल कर लीजिए।
मशहूर जड़ी बूटी आपको पता है यार,
ये आपको
हमारे लिए जो नाम पहली बार है ना वो भी आपके नदी मशहूर है, ये बता दो। चले आगे बढ़ते हैं।
तो छोटी हड़ 5 दाने गुलमुंडी के, 10 दाने और 5 दाने आलू बुखारे के। अब ये दो चीजें ना भी मिले तो आलू बुखारा भी काफी है, तो ये तीनों चीजों को रात को एक गिलास पानी में भिगो लें, सुबह जो है इसको छान कर इसका पानी पी लिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये कुछ दिनों के अंदर इंशाअल्लाह फायदा हासिल होगा।
मैं जाते हुए कुछ, आजकल बच्चों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू है वो है दांतों का, ठीक ठाक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम की वजह दांतों की सफाई ना होना है, और बच्चों में ये सफाई ना होने में जो बुनियादी वजह बनेगी वो वालिदैन की समझें कि वो कमजोरी है, इनकी इनकी तवज्जो नहीं है कि अपने बच्चों को उम्र के मुताबिक मिसवाक के साथ साथ टूथपेस्ट जो भी होता है इसका बिल्कुल आदि बनाए। बल्कि मेरी दरख्वास्त है, यानी यूं समझे कि दांत साफ रखें, दांत की सफाई और मुंह की सफाई मिसवाक के जरिए भी करवाएं, और मिसवाक के साथ साथ आप ये अपने टूथपेस्ट या ब्रश अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप बिल्कुल करें, लेकिन मियारी ब्रश हो, मियारी टूथपेस्ट हो उसके साथ करें, और मिसवाक अच्छी इस्तेमाल में लाएं इंशाल्लाह। तो ये कि बच्चियों के लिए तो जाहिर है कि मिसवाक का एक अपना वो एक नहीं है इतना, वो उतना तो दांतों की सफाई का ख्याल रखें। अच्छा, यही कम दांतों की खराबियां कमजोरियां हैं, तो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं या बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उनके फिर दांतों को कीड़ा लग जाता है, दांत सड़ जाते हैं, फिर वो रूट कनाल कराने जाओ तो ये कराने जाओ, फिर यकीन माने हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ दांतों के मामले में। ये जो टीथिंग टीथ फील्ड है ना, डेंटल फील्ड, इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है इसमें, यानी इसमें ये महंगा इलाज है डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना?
बिल्कुल,
ये महंगा इलाज है, मेहरबानी करें, बहुत सस्ता और बहुत आसान हल है कि आप दांतों को साफ रखें। तो बच्चों का ख्याल रखें, मेरी दरखास्त है बच्चों के सोने से पहले इनके दांत और मुंह को साफ करके सुलाइए और उठने के बाद इनका मुंह और दांत साफ करवाइए। जब ये मदरसे या स्कूल से वापस आ जाएं तो इन्हें इनके मुंह की सफाई की तरफ लेके जाइए। ये तो मैं बच्चों के, बड़ों के लिए भी मैं अर्ज करूंगा, मेहरबानी करें जब भी खाना खा लें, खाना खाने के बाद स्पेशली जब चाय पीते हैं तो चाय वगैरह पीने के बाद मुंह की सफाई का ख्याल रखें, कुली सही तौर पर करें, मुंह में कहां कहां जर्रा तो दाने फंसे हुए होते हैं और दांतों पर बहुत सारी चीजें जो है ना वो चिपक जाती हैं। ये दांतों की एक तखलीक इस तरह की है, जैसे ये ना, ये नाखून, नाखून पर अगर आप इसकी सफाई ना रखें तो नाखून, ये नाखून बेजान होता है, तो नाखून के ऊपर इसकी स्मेल और इसका दाग धब्बा बहुत से चिकनार ये नाखून पर लगी रहती है जब तक इसको सही साफ ना करें। तो यूं समझिए कि दांत को भी इसी तरह आपको साफ करना होता है जिस तरह आप उंगलियों को और उंगलियों को और ये सबको साफ रखते हैं। तो दांत और इसके जो मसूड़े हैं आपके जहाँ, इनकी भी सफाई बहुत जरूरी है। कि इसमें हम खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इतना खुद मुंह में डाल रहे हैं तो ये इनकी चीजें लगती हैं। तो मिसवाक को जरूर इस्तेमाल करें। मिसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत रिजा इलाही का सबब है और मिसवाक के आदि को मरते वक्त कलीमा नसीब होने की बिशारत है अल्लाह की रहमत से। तो ये दरखास्त है मेरी, बहुत ही जो सा ताकीदी दरखास्त है, स्पेशली बच्चों को दांतों और मुंह की सफाई और हाथों की सफाई की तरफ लेके जाएं। कई अमराज से आप बच जाएंगे, डॉक्टरों से आप यकीन माने दूर रहेंगे, आप दवाइयां आपके घर में ना होने के बराबर आएंगी इंशाअल्लाह। और बड़े भी फिर अपनी इस तरह की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अल्लाह करीम हम सबको जाहिरी और बातनी बीमारियों से बचाए, सेहत और तंदुरुस्ती दे। जितने भी इस्लामी भाई मरीज हैं, बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं, दुआ करें अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती भी आपको हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि बना।